blessed, happy. Then Subal took the clothes of Srimati Radhika and decorated himself like Srimati Radhika. And he gave his turban, his all clothes to Srimati Radhika, and Radhika became Subal. He was so beautiful like Srimati Radhika. Anyone cannot recognize her, him. So he took all the dress of Subal and went to Radhakund and met, and Krishna became, and Radha became so happy. This pastime took place also on Ashtami. So in Radha Damodar temple and all other temple, also Madan Mohan Govindaji, everywhere we will see yesterday that Srimati Radhika is in the shape of Subal, having turbans, having bansi, having dhoti and kurta, and taking a cloth on her breast. So this day is very pious. We do pranam to this pastime of Krishna. Also, yesterday was the auspicious day, the Dasharas. And when this Dasharas will be paripakva, matured, then this Chaitanya Mahaprabhu will show that I am Radha plus Krishna, and he will appear in that shape. And then if his qualification and standard is up to Shringar Rash, then he can see and serve Chaitanya Mahaprabhu in that. अब हम लोग थोड़ा सा मन शिक्षा में जो बाकी थोड़ा सा रह गया भजन रहस्य उसी का थोड़ा सा बाकी रह गया जो एक श्लोक हमने जदई छेरावासम पतिजनी जुअद्वंदम तच्चेत परिचरितम अरभिलाष स्वरूपम श्री रूपम सगणमीह तस्याग्रजमपि स्फुटम प्रेमना नित्यम स्मरणम तदा तं शुणु मनः यदि इच्छे सा इच्छे आवासम कल इसकी व्याख्या हमने की यदि वृंदावन थे के ब्रजते थे के रागात्मिक भावे थे राग युक्त हुए यदि ओखने थाकता इच्छा है एवं राधा कृष्ण किशोर किशोरी के यदि सेवा करवार यदि लालसा थाके इच्छा यदि एक टू थाके लालसा ताले स्वरूप दामोदर राय रामानंद श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सगण रघुनाथ अन्य अन्य समस्त गोस्वामी संगे तादर के स्मर नित्यम नित्य काल स्मरण कर एवं ताके दंडत प्रणाम कर नम एटा काल के आमी बोली छी एर मध्ये जे किरकम स्मरण करते हवे তার পদ্ধতি কিছু কিছু হিন্ট দিয়েছি এখানে বুঝব সুবল সখা ইত্যাদি সুবল সিদাম ইত্যাদি এবং মা যশোদা নন্দ বাবা ইত্যাদি রোহিণী মা এবং ললিতা বিশাখা ইত্যাদি রূপ মঞ্জরী ইত্যাদি এমনকি বৃন্দাবনের লতা গুল্ম নদী পর্বত যা কিছু দেখছ ও সকলই কৃষ্ণের প্রতি রাগাত্মিক ভাব আছে ওদের আত্মাতেই অনুরাগ আছে কৃষ্ণের প্রতি এই জন্য ব্রজের যত কিছু আছে সব কিছুই রাগাত্মিক পশু ময়ূর কোকিল সুপ শাড়ি এরা সব হচ্ছে রাগাত্মিক রাগানুগা কোনো নয় ব্রজেতে রাগানুগার স্থান নাই অনেকে এটা বুঝতে ভুল করে যে রাগানুগার মধ্যে সবথেকে শ্রেষ্ঠ কে গোপীগণ বলে কিন্তু এটা ভ্রম তাহাদের সিদ্ধান্তই ঠিক হল না এই জন্য ওরা হচ্ছে রাগাত্মিক রাগাত্মিক মধ্যে সবথেকে বৈশিষ্ট্য ওদের শ্রেষ্ঠ বলা যাবে না নিজের নিজের ভাবে, তেজসোদাত শ্রেষ্ঠ বাৎসল্য ভাবে, সখাগণ সখ্য ভাবেতে শ্রেষ্ঠ, গোপীগণ নিজের ভাবেতে শ্রেষ্ঠ, সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এইটা বলা যাবে না, কিন্তু তাহাদের বৈশিষ্ট্য আছে। রসেন উৎকৃষ্টতে কৃষ্ণ, রসেন উৎকৃষ্টতে গোপী, এইরকম হয়ে বলবো রসা রসস্থিতি, কিন্তু বলবো যে শ্রেষ্ঠ গড়বড় হয়ে যাবে। এই যেন খুব মেপে তুলে এইসব বলি কথা বলতে হয়। এই যেন গোপীগণকে যদি বলা যায় রাগানুগাত্মিকা, রাগানুগা মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ, মহা অনর্থ, এটাগুলি বুঝতে হবে। এই জন্য প্রথমে এইসবগুলি গ্রন্থগুলি অনুশীলন করব, আর এই অনুশীলন করে যারা আমার থেকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব তাহাদের সঙ্গে তার চরণ ধুলিতে দু চার জন্ম জন্ম জন্মে, এখানে বলছে প্রতি জনু মানে জন্মে জন্মে এদেরকে স্মরণ করবে। কাকে? স্বরূপ রায় রামানন্দ রূপ গোস্বাম, জন্মে জন্মে, এক জন্মেতে সিদ্ধি হয় না, হয়তো লাখো জন্মেতে যদি সিদ্ধি হয়ে যায়, যেরকম হোক কি পণ্ডিত বলেছিলেন না, কোটি জন্মে তোমার মুকুন্দ দত্ত বলেছে, তুমি খড়জটিয়া বেটা, তোমার কি হবে না, কোটি কৃপা করব না। তখন তিনি কাউকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মহাপ্রভুকে, প্রভু আমার উপরে কখন কৃপা তাহার হবে, কখন আমাকে ডেকে আমাকে এই কৃষ্ণ প্রেম দিবে, ওই কোটি জন্মে পরে দিব। তখন বাইরে দাঁড়া যাতে নাচতে লাগলেন নৃত্য করতে, কোটি জন্মে পরে তো খুব অল্প সময়, আরে কোটি জন্মে তো বহুত কম সময় হ্যাঁ, আমার তো ধারণা ছিল না যে কোটি জন্মে পরে ও পাবেন, কিন্তু কোটি জন্মে পরে আমি পাবো, তো ব্যাস আনন্দেতে একবারে উৎফুল্ল হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। বহু বহু সংস্কার, বহু বহু দিনে পরে, তারপর রাগানুগা ভক্তিতে একটু লোভ হয়, এমনই হয় না, কোটি জন্মের সুকৃতিতে ভক্তি হবে, এটা ঠিক, সুকৃতিতে ভক্তি হবে, কিন্তু কোটি কোটি জন্মের সুকৃতিতেও প্রেম ভক্তি এই যে রাগানুগা এটা হবে না, লোভ, এই লোভটা হওয়া মহা দুষ্কর, কোটিস্বপি মহামুনি। এই জন্য বলি ভাবটা হচ্ছে সুদুর্লভ, ভক্তিটা কিছু বিশেষ না, একটা নাম করলেও ভক্তি হবে, বৃন্দাবনেতেও আসলে হবে, একটু শ্রদ্ধাপূর্বক বৈষ্ণবদানকে একটা কিছু খাওয়াইয়ে দিলে হবে, তাদের আদর সৎকার একটু প্রণাম করলে, এটাও ভক্তি। কিন্তু ভাই অবি উত্তমা ভক্তি হবে না, সঙ্গসিদ্ধা আরোপ সিদ্ধা গৌণা, তারপরে কর্মমিশ্রা জ্ঞান মিশ্রা তপ মিশ্রা এইসবগুলি হবে আর কি, আরোপ সিদ্ধা সঙ্গসিদ্ধা তো বললাম, আর কর্মমিশ্রা জ্ঞান মিশ্রা গৌণী মিশ্রা, কর্ম প্রধান ভূতা জ্ঞান প্রধান ভূতা ভক্তি প্রধান ভূতা কর্ম ভক্তি প্রধান ভূতা জ্ঞান যোগ তপস্যা এইসবগুলি হবে, কিন্তু এই শুদ্ধ ভক্তি রাগানুগাতে লোভ হওয়া ভারী ভারী কোটি জন্ম সুকৃতির না লভ্যতে। এই জন্য বলছেন যে জন্মে জন্মেতে তুমি স্বরূপ দামোদরকে কেঁদে কেঁদে ডাকবে, হার উপ স্বামী অনুগ্রহ কর, হে রায় রামানন্দ আমাকে কৃপা করুন, হে রূপ গোস্বামী তোমা ছাড়া আমার আর কোনো অবলম্বন নাই। এই রূপ গোস্বামীকে যারা সর্বস্ব মনে মনে করেন ওদের চরণেতে ধুলিতে আগে যাও, নিজের গুরু পাদ পদ্ম রাগানুগা মধ্যে প্রধান আছেন এখন বর্তমানে, তাহাদেরকে দণ্ডত প্রণাম করে, হা প্রভু আপনি অনুগ্রহ করুন, কখন আপনি আমাকে রূপ গোস্বামীর পাদ পদ্মেতে সমর্পণ করেন। নরোত্তম ঠাকুর বলছেন না, প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লইয়া যাবে পাদ পদ্মে আমার সমর্পণ। এইরকম কোটি কোটি জন্মে যাউক, তখন মহাপ্রভু করুণা দ্রবিত হয়ে যাবে, বলে আচ্ছা আচ্ছা এই জন্মে তো তোমাকে করে দিছি। এগুলি করুণা পাবার এগুলি হচ্ছে লক্ষ্মী। এই জন্য বলছেন এখন তিনি এখানে রাগাত্মিকা ভক্তি সম্বন্ধে ছিল ভক্তি বন ঠাকুর এই মনঃশিক্ষার ভজন দর্পণেতে এগুলি করেছে, যার না ভজন পিপাসু লোক, যে ভজন কি পিপাসা জিনকে অন্দর মে হ্যায়, इन ग्रंथों को देखेंगे, गुरुजी से ये सब चीज सुनेंगे। आज जिसको भजन की भी पाषा नहीं है तो उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, नाचेंगे कूदेंगे, हरिद्वार देखेंगे, अमरनाथ की गुफा देखेंगे, पशुपति क्या पशुपतिनाथ को देखेंगे, और सागर में 10 बार स्नान करने जाएंगे, सब तीर्थ एक बार, आर तीर्थ बार बार, आर गंगा सागर एक बार, फिर जनु जवार नाम ना ले, आर कान धरछी आर जाबो ना ओखने, तो ओरा वही करू। किंतु जरा भजन पिपासु व्यक्ति सब भक्ति विनोद ठाकुर भजन दर्पण दिए पढ़वर सब अनुशीलन करब, एर मध्य एक तो टेस्ट आसु, यही सब गुले निश्चित रूपे चैतन्य चरितामृत पढ़वे जे अनुशीलन करबे, रागानुगा भक्तिर प्रति लोभ मने आसबे ही निश्चित रूपे ते आसबे, आज जदि ना आसे ताले पढ़े नहीं, अनुशीलन ही करे ना, एटा बुझते होबे। रागानुगार मूल ग्रंथ होच्छे এই চৈতন্য চরিতামৃত, এর মূল হচ্ছে আরো ওই জীব গোস্বামীর সন্দর্ভগুলি, তার মধ্যে আবার প্রীতি সন্দর্ভ, আর তার মূল হচ্ছে কি ভক্তি বিনোদ ঠাকুর রূপ গোস্বামীর, ভক্তির স্বামী সিন্ধু আর উজ্জ্বল নীলমণি, ওই দুটি নাটক ইত্যাদি সব। হংসদূতকে কমে মনে করব না, দানকেলি কমুদি কমে মনে করব না, ওনার সবটা গ্রন্থই হচ্ছে ওইগুলি, আর এইগুলি অনুশীলন করে পড়ে আর শুনে কাহার যদি রাগানাগা প্রতি লোভ হয় নাই, তার মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোনো দুর্ভাগা জন্মগ্রহণ করে না, এইটা বুঝে রাখো। না না, ব্রজে আসবার কি দরকার, বৃন্দাবনে সেবা কুঞ্জ আর ওখানে দেখতে যাবে কি করতে, ওই বংশীবট কি করতে যাবে, কি দরকার, গোপীশ্বরকে কেন দর্শন করবে, লালসা কেন, যদি এতে নাই। এই জন্য এইসবগুলি বিচার করতে হবে, এই জন্য শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তার ভজন দর্পণেতে লিখেছেন, স্বরাগম মানে স্বরাগম, স্বরাগম রাগের সহিত, যদি রাধাকৃষ্ণের রাগের সহিত বৃন্দাবনের মধ্যে থাকবার যদি লালসা থাকে, লালসা মানে লোক, আর যদি এইখানে থেকে রাধাকৃষ্ণের সেবা করবার যদি লালসা থাকে, তাহলে কি করবে, স্বরাগম মানে তখন বলছেন রাগাত্মিকা ভক্তি যাহার আছে। এই ব্রজবাসীগণের মধ্যে গো মৃগ শুক পশু পক্ষীয়তেও আছে, সুস্পষ্ট রূপেতে বিরাজমান, বিরাজন্তিম অভিব্যক্তম ব্রজবাসী জনাদিষু রাগাত্মিকাম অনুসিতা যাসা রাগানুগো উচ্যতে। এই পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা ময়ূর সুকসারী মধ্যে যে বিরাজন্তি সুস্পষ্ট ভাবেন, যে ভাবটা রয়েছে কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ, ওদেরকে রাগ আত্মিকা বলে, ওদের আত্মাতেই রাগ, ওদের দেহ দেহিতে ভেদ নাই, ওদেরই ভাবকে রাগ আত্মিকা বলে। ওই কোন বৈষ্ণবের নিকটেতে শাস্ত্রেতে শ্রীমৎ ভাগবতেতে রূপ গোস্বামীর গ্রন্থেতে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থেতে শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থেতে এইগুলিকে দেখে, বিশেষ করে বৈষ্ণবের মুখেতে কাহার প্রতি একটু ওইটাকে পাওয়ার লালসা উৎপন্ন হয়ে যায়, তাহলে রাগানুগার ওইটি অধিকার, যে যে কোনো স্থিতিতে হোক, এমনকি ওই কৃষ্ণকরণামৃতের কর্তা বিল্বমঙ্গল মতন দুরাচারীও যদি থাকে আর ওই স্থিতিতেও যদি এসে যায় ওই লোভ, ওই লোভ আসাতে দুরাচার একেবারেতে তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়, কৃষ্ণের প্রতি এই অনুরাগময় ভাবনা পাওয়ার জন্য লোভ উৎপন্ন হয়ে যাবে, তখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে কিসে এটা পাওয়া যাবে এইটা বিচার করবে, লোভ উৎপন্ন হওয়াতে কেন যে হবে এর কোনোই নাই, কোনো যুক্তি থাকতে পারে না, শাস্ত্রের যুক্তিও নাই। শাস্ত্রের যুক্তি শাস্ত্রগুলিকে অপেক্ষা রাখে নাই, লোভটা কেন হল? মিষ্টি খাবার পয়সা নাই পকেটে, কেন রসগোল্লা খাবার লোভ হলো? এর যুক্তি কি? যুক্তি ওই লোভটা রাখে না। আমি কোয়ালিফাইড ভেদার আই এম নট, আমি এর জন্য যোগ্য আছি কি না আছি, লোভটাই অপেক্ষা রাখে না। মহারানী ভিক্টোরিয়াকে কোনো একটা দরিদ্র কালো কলুঠা একটা লোক দেখল, ভিক্টোরিয়া মহারানী আসছে পরম সুন্দরী, তখন হোল ওয়ার্ল্ডের সে রানী, তাহার অঙ্গরক্ষক তাহার কত লোক আছে, আর ওইটা দেখে তাহার মনে হয় এইরকম স্ত্রী যদি পেতাম আমি তাহলে খুবই ভালো হতো। কেন লোভ করলে? পাতে পারে সেটি, ভিক্টোরিয়াকে পাবে না, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তিতে যদি এইরকম লোভ হয় সেটি পেয়ে যাবে কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ ভিক্টোরিয়া নয়, কিন্তু কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকা প্রীতি, এরকম লালসা থাকে আরসিক বৈষ্ণবগণের আযোগ্য বৈষ্ণবের যদি সঙ্গ হয়, আর এই শাস্ত্র থেকে যুক্তি দেখবে কিরকম তাহাকে পাওয়া যায়, এই যুক্তি দরকার আছে শাস্ত্র থেকে, এই যুক্তি অপেক্ষা। কোন যুক্তি করলে কি করলে হবে? তখন বৈষ্ণবরা বলবে তন্নাম রূপ চরিতাদি সুকীর্তনানুক্রমেণ রসনা মনসী নিয়োজ্য তিষ্ঠন ব্রজে। আর ব্রজবনেশ্বরী তংনাথত্বে স্মরণম তদাশ্রুণুং মনঃ, এইটুকু। আরো আর সব বলে পঞ্চামৃতমিদম রূপ গোস্বামীর ওই শ্লোকটা বলবে। তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কাছে যাবে, জিজ্ঞাসা করবে কৃষ্ণে আমি কৃষ্ণের ওই সেবা কিসে পাবো? তিনি সাধু সঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ মথুরাবাসী মূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন সকল সাধন শ্রেষ্ঠ, এই পঞ্চঙ্গ কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পাঁচে। তখন তখন এই সবগুলি করতে লাগবে, ঢুঁড়তে লাগবে যে এরকম কে বৈষ্ণব, কার আনুগত্যতে আমি ভজন করব। গুরুদেবকে জানাবে, গুরুদেব বলবেন যদি নিজে যোগ্য হন তাহলে তাকে বলবেন, আর বলবে না তুমি জীব গোস্বামীর নিকটে যাও। কে বলল? কে বলল যে জীব গোস্বামীর নিকটে যাও? হৃদয় চৈতন্য। কাকে বললেন? এতে কোনো ক্ষতি না, দুজনই একই রকম। যদুনন্দন আচার্য ছিলেন, তিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে মন্ত্র দিয়েছেন, আবার তিনি আবার গেলেন কোথায়? স্বরূপ দামোদর চরণে তাহাকে সঁপিয়ে দিলেন। এই সবগুলি বিচার রাখতে হবে, আর নয় তো যদি উনি এই যেরকম হতে আরো দেখা যায় কোনো ভেদ নেই। এই জীব গোস্বামীর নাই, শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ওই কি ছিলেন দুজন ব্রজনাথ আর দেখা দিলেন, বললেন যে পুরীতে যা, পুরীতে যাচ্ছে আমার। আচ্ছা যাও তো গোপাল গুরুর সঙ্গে একটু সঙ্গ করবে তো? তাহলে গোপাল গুরু কি করলি? কিরকম সুন্দর, যে যাহাতে ছিল তাহাকে ওই মধ্যে অবস্থিত করে দিল। এই জন্য শিক্ষা দীক্ষা গুরু, যদি শিক্ষা গুরু ওই রকম থাকে, দীক্ষা গুরু ওই রকম থাকে, তাহলে দুজনে এক তত্ত্ব একই অভিন্ন অখণ্ড নিত্যানন্দ প্রবোচন অখণ্ড গুরুতত্ত্ব। এই জন্য যারা বৈষ্ণব আছে সবই আমাদের গুরু মহারাজ, বৈষ্ণব মাত্রেই গুরু। এইটি সবগুলি বিচার করে দিয়ে এখন রাগময়ী ভক্তি বললেন, সাধন ভক্তি ওইটাকে পাওয়ার জন্য সাধন ভক্তি। এই সাধন ভক্তি পরিপক্ক হলে হয়ে যায় ভাবভক্তি, আর ভাবভক্তি পরিক অবস্থাতে তাহাকে বলে প্রেমা। এই জন্য শ্লোক বললেন আদৌ শ্রদ্ধা তত সাধু সঙ্গ অথ ভজন ক্রিয়া তত অনর্থ নিবৃত্তি সাত তত নিষ্ঠা রুচিস্তত আশা শক্তি তত ভাব প্রেমাভুদঞ্চতি সাধকা নাম এম প্রেমনা প্রাদুর্ভাবে ধর্ম। এই শ্লোকের সম্বন্ধে আমরা অন্য সময় বলেছি, এখন যেখানে তে রাগ নাই উৎপন্ন হয় নাই, রাগ উৎপন্ন নাই, কিন্তু তাহাকে প্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্তি উপজায়তে ভক্তিতে প্রবৃত্তি হচ্ছে, কিন্তু অনুরাগ নাই, তখন তারা কি করবে? বৈদিক ভক্তি করবে। শাস্ত্রেতে বলা হয়েছে যে চারো বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে স্ব স্ব কর্ম করিতে সে রোগ রোগে পড়ে। ওর শ্লোক শ্রীমদ ভাগবতের বর্ণাশ না যত রকমের বিধি নিষেধ তার মধ্যে সব থেকে বেশি নিষেধ কি? কৃষ্ণকে কখনো ভুলো না, আর কৃষ্ণকে সবসময় স্মরণ করবে, নচেত নরকে যাবে। এইরকম শাস্ত্রে বহু সমস্ত শাসন বাক্য আছে, এটাকে শুনে ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে। কতগুলি লোক আর আছে দেখো তুমি ভজন না করলে নরকে যাব, যে তার নরকে আমি কেন যাব, আমি কি করলে হ্যাঁ কৃষ্ণের নাম করো শঙ্কর, এইগুলি ভক্তি, এটা যে সাধন। আর যেখানে রাগ উৎপন্ন হয়ে গেছে সেটি হয়েছে রাগাত্মিক, আর রাগ পাওয়ার জন্য লোভ উৎপন্ন হয়েছে এইটা হচ্ছে রাগানুগা ভক্তির অধিকার। অভি ভক্তি অভি হয় না এই রাগানুগা, অভি লোভ উৎপন্ন মাত্র হয়েছে। এই জন্য যদি কারো লালসা থাকে এইরকম হয় তাহলে স্বরূপ দামোদরকে রামানন্দ আসব রূপ গোস্বামী ইত্যাদি গুরুবর্গকে গুরুদেবকে ডাকতে হবে, প্রেমপূর্বক তাদেরকে স্মরণ করতে হবে আর ডাকতে হবে, তাকে নমস্কার করতে হবে। আজকে এই পর্যন্ত থাক, কাল থেকে আমরা যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন রহস্য সেই সমস্ত আরম্ভ করব। মাঝখানে যেখানে অক্রূর ব্রহ্মদেবে স্নান করেছিলেন, আর যেখানে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে থেকে গেলেন আর আর কৃষ্ণ আর বলরাম বসুদেব কৃষ্ণ ওরা ওখান থেকে মথুরা ফিরে গেলেন, আর যেখানে গোপরা আর গোপরা দর্শন করেছিলেন কৃষ্ণকে অন্যায় করে দিয়ে ব্রহ্মলোক তাহার, তা সেই স্থান আছে ওখানে, যদি কেউ যেতে চায় আজকাল পরশুর মধ্যে যখন ব্যবস্থা হবে কমলাপতি ইত্যাদি বলে দিবেন আপনার সেই রকম যাবে। আর চার তারিখে কি পাঁচ তারিখে, পাঁচ তারিখে বেলবনের রাখা আছে, ওখান থেকে সব যাত্রীরা গেছে বাইরে হরদ্বার ইত্যাদি, ওখান থেকে ফিরে আসলে তারপরে ওখানে যাবে। আর পান্ডাজি তো আজকেও আসে নাই, তো স্নিগ্ধ সেবকো কে হৃদয় মে ও সব সময় আবির্ভূত রহতে হ্যায়। শিষ্য আপনে গুরু কো এসা নাই সমঝতা যে ও মর গে অব হাই নাই হ্যায়, এসা নাই সমঝতে। জো দূর রহনে বালে ও ভি সমঝেঙ্গে যে গুরুজি হমারে হৃদয় হমারে সাথী মে হ্যায়, এসা সমঝনা চাহিয়ে। ও গৃহস্থ ভক্তোঁ কে লিয়ে চার পাঁচ বার মৌকা এসা দেতে থে জিসে কি ও লোক সাধুঁ কা সঙ্গ পা সকে, আর নয় প্রকার কি ভক্তি ইয়া পাঁচ প্রকার কি ভক্তি কা ও লোক অনুশীলন কর সকে, সহজ রূপ মে কর সকে, জো ঘর মে সম্ভব পর নহি হ্যায়। ইসলিয়ে বর্ষ কে প্রারম্ভ মে নবদ্বীপ ধাম কি পরিক্রমা করাতে থে, জিসমে 10-12 हजार लोग अभी तक आते हैं, उन्होंने आरंभ किया था। उसमें प्रत्येक व्यक्तियों के चाहे और न चाहे सभी लोग श्रीमन महाप्रभु की धाम की परिक्रमा करते थे। चैतन्य महाप्रभु जी ने जो जो लीलाएं की उनमें उनको भ्रमण कराते, उसकी धूली लगे, उसका महात्म्य समझें और साधुओं का उपदेश उसमें हो। अरे ऊपर बसना एक नीचे चले। तुलसी जी की परिक्रमा, मंगल आरती प्रतिदिन 2-3 बार, हरि कथा सुनने का सुयोग अपने आप मिलता था। इच्छा करे जो घर में नहीं हो सकता था वो अपने आप तुलसी जी की परिक्रमा इत्यादि हो जाना, धाम में आना, प्रसाद सेवा, मंदिर की परिक्रमा, तत्व उपदेश, साधन भजन कैसा हमारा होना चाहिए। एक बार घड़ी में जैसे कि दम दिया जाता है 7 दिन के बाद में, ऐसे वो दम दे देते थे, जो कि 4 महीना चलता था या 3 महीना चले, और उसके बाद में आषाढ़ महीने में रथ यात्रा होती थी, सबको लेकर के पूरी जाते थे, या चुचुड़ा और नवदीप में रथ यात्रा कर दिया, जिसमें कि सब भक्त लोग जो कि दीक्षित और ये हैं सभी लोग आते थे, जिसमें कि 8-9 दिन तक हरि कथा सुनने के लिए प्रचुर मिलता था। कैसे साधु जीवन व्यतीत होना चाहिए, कैसे हरि नाम करेंगे, कैसे भजन करेंगे, ये सब की पद्धति बतलाते थे। ये बीते बीते कार्तिक का महीना आ जाता था, बस कार्तिक में सबको लेकर के किसी न किसी एक तीर्थ में जरूर जाते थे, कभी वृंदावन धाम, प्राय वृंदावन धाम, कभी द्वारका, कभी दक्षिण के तीर्थ समूह, कहीं काशी, कहीं प्रयाग में, इस तरह से, किंतु विशेष स्थल में पूरी धाम में और यहाँ नवदीप धाम में। ये कार्तिक का महीना होता था। उसमें एक महीना जैसे कि इस बार किया गया, ऐसे एक महीने का सुयोग देते थे, और इसके बाद में व्यास पूजा आ जाती थी। व्यास पूजा में, गुरु पूजा में सब लोग आते थे। इस तरह से वर्ष में कुछ दिन सुयोग देते थे। विद्या भी अधिक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई गुण नहीं था, किंतु उन महापुरुष ने हम लोगों को ला करके और भक्ति रस का एक थोड़ा सा स्वादन कराया। अब इसी से समझ लीजिए कि उनके कोटि गुणों में से एक गुण भी आंशिक रूप में हम में नहीं है, हम लोगों में नहीं है, और हम लोगों के पीछे लाखों लोग घूम रहे हैं और अपने को समझते हैं कि इन लोगों के पास में जाने से भक्ति होगी, तो उनकी कितनी महानता होगी। बड़े सुंदर व्यक्तित्व के थे, अत्यंत सुंदर, इसकी त्वचाएं अत्यंत कोमल, स्निग्ध, जो उनके चरणों की सेवा किए होंगे वो लोग समझेंगे, दूसरे नहीं समझ सकते। होठ बड़े पतले, अंगुलियां आर्टिस्ट, थिन आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक फिंगर, खूब पतली पतली अंत में, बहुत सुंदर, और भुजाएं कुछ लंबी थी। बड़े बड़े लोग उनका दर्शन करके ही नतमस्तक हो जाते, वो प्रश्न ही नहीं कर पाते उनका व्यक्तित्व तो देख करके। तो हम लोग इस पर गर्व करते हैं कि ऐसे महापुरुष का हम लोगों ने आश्रय ग्रहण किया, गर्व है हम लोगों, किंतु दुख है, नाम नाम मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता निमत स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम इदृशम महा। ऐसे महापुरुष का संग करके भी जैसा हमको लाभ करना चाहिए थे उनके संग से भक्ति, वो हम लोग नहीं कर सके, यही इसी का एक मलाल रह जाता है, दुख होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में बहुत से ऐसे लोग थे जो महाप्रभु का कोई आदर नहीं कर सके, उनसे कुछ ले ही नहीं सके, जो कि अपना प्रेम धन वितरण करने के लिए जगत में आए। इसलिए इस महापुरुष की मैं कितनी महत्ता वर्णन करूं, किंतु फिर भी थोड़ा सा जो स्पर्श कर दिया उसका आप लोग देख रहे हैं। जिन जिन को उन्होंने स्पर्श किया सभी लोगों का ऐसा, पूज्यपाद बामन महाराज जी ने उनकी बड़ी सेवा की, एकदम निष्कपट रूप में। देखिए उनका विचार कैसा, वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के डिक्शनरी हैं। ऐसे ही सबको जिसको जिसको छू दिया वही वैसा बन गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जब संन्यास जब देने को हम लोगों को हुआ, हम लोगों ने कहा कि हम लोग संन्यास के योग्य ही नहीं हैं। सिद्धार्थ महाराज जी कहाँ, गुरु महाराज जी कहाँ, भारती महाराज जी कहाँ, सिद्धांती महाराज जी कहाँ, माधव महाराज जी दिग्विजयी, सब लोग नेमी महाराज जी दिग्विजयी लोग जब संस्कृत का उच्चारण करते तो एकदम एक फुट ऊंचा हो जाते थे। कैसा व्यक्तित्व सुंदर और सब विद्याओं का भंडार, युक्ति विचारधारा। हम लोगों ने तीनों ने भी रिफ्यूज कर दिया, हम लोग नहीं संन्यास लेंगे। किंतु नहीं होने पर भी देखो उन्होंने अनुग्रह करके दिया। अब मैं हम लोग जहां पर के वृक्ष कोई नहीं है वहां पर एरंड वृक्ष द्रुमायते, यहां पर कोई वृक्ष नहीं होता वहां पर छोटे छोटे ईकमन के पेड़, छोटे छोटे रेणी के पेड़, एरंडी वृक्ष का, एरंडी समझते हैं जिसमें रेणी का फल लगता है और तेल बनता है, तो जहां पर पीपल के, बट के, आम के, पाकुड़ इत्यादि के वृक्ष नहीं है, मौलिश्री का वृक्ष नहीं है, वहां पर एरंडी द्रुमायते। जब उन लोगों का हम विचार करते हैं और अपनी भक्ति का जब तुलना देते हैं तो देखते हैं कि हम लोग नथिंग के बराबर हैं। तभी हम लोगों की भी बात आज सुनने वाले बहुत हैं जो सुन रहे हैं, तब हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं। उन्हीं की दो एक उपदेशों को बेच कर, हम लोग बेच करके जीवित हैं, असल लोग इतना आदर करते हैं, सचमुच में उनका पूरा ही हम लोग ग्रहण करते तो न जाने क्या हो जाता। तो आज मैं बंबई वालों के लिए जो कल जा रहे हैं भोर में, उनसे कोई वार्तालाप हमारी अधिक नहीं हो सकी। जब मैं बंबई जाता हूं तो हमारी सेवा इतनी करते हैं कि मैं उनका ऋण से भार से दब जाता हूं। इसलिए उनको दो एक हमारे गुरु जी के जो उपदेश हैं, हमारे आचार्यों के उपदेश हैं, भागवत का जो संदेश है जीवों के लिए, मैं दो एक संक्षेप में उसकी अवतारणा करूंगा। विशेष करके गृहस्थों के लिए क्या कर्तव्य है, साधकों के लिए, साधारण साधकों के लिए क्या कर्तव्य है, इस पर विचार करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय में विभिन्न देश विदेश के सब भक्त लोग आते थे। उन लोगों ने निवेदन किया जे प्रभु रथ यात्रा समाप्त हुई, हम लोगों ने रथ यात्रा का दर्शन किया, हम लोग रथ को चलते हुए हम लोग बहुत बार देखा है, इसके लिए हम लोग नहीं आते, रथ कैसे चलता है, कितनी भीड़ होती है, और उस समय में पुरी में जा करके पुरी धाम में हम लोग बहुत से चीजें खरीदते हैं, बाजार करने, इसके लिए हम लोग नहीं आए हैं। अब जैसे वृंदावन में हम लोग आए तो पहले से हम लोग प्लान बना करके आते हैं, जब वृंदावन में जा रहे हैं तो वहां से कौन कौन चीज का बाजार करेंगे, कौन कौन चीज सौदा लेंगे, ये बाजार। शुद्ध भक्तों का ये सब नहीं होता। साधु संघ में हम हरि भजन के लिए क्या चीज हम ग्रहण कर सकेंगे, इस पर वो अधिक ध्यान देते हैं। तो महाप्रभु के समय में कोई किसी चीज के लिए नहीं आता था, रथ यात्रा का जो प्राण था चैतन्य महाप्रभु का उपदेश और उनका चरित्र और उनकी शिक्षाएं जीवन से, इसको ग्रहण करने के लिए लाखों भक्त कहां बंगाल से कहां कहां से गौड़ीय वैष्णव सब आते थे, उड़ीसा के लोग भक्त आते थे। उनकी एक एक लीला चरित्र में कितनी असंख्य खूब गहरी शिक्षाएं भरी रहती थी। उनका एक भी ऐसा जीवन चरित्र नहीं है जिसमें कि शिक्षाएं परिपूर्ण रूप से भरी हुई नहीं रहती थी। साधारण एक बात भी सबके लिए शिक्षा की होती थी। कुलीग्राम के किसी भक्त ने कहा, जे प्रभो रथ यात्रा हमारा देखना सार्थक हुआ, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी गया में गए तो ईश्वरपुरी पास से भेंट हुई तो उन्होंने कहा जे गया यात्रा सफल, हमारी गया यात्रा सफल हुई। कैसे? पिंडदान दिया इसलिए? नहीं नहीं, वहां पर गदाधर जी का पाद पद्म है, उसको देखने से हमारा जीवन यात्रा सफल हो गई, या पुनपुन नदी में पिंडदान कर दिया हमारी यात्रा सफल? नहीं, जत खान देखिलाम चरण तुम्हार, तुम्हारे चरण कमलों को जब से देखा तब से हमारा यात्रा ये सफल। क्या देखा? आंख से देखा? नहीं नहीं प्रभु, मैंने कान से जब से आपके चरण कमलों को दर्शन किया। कैसे दर्शन किया? कान से। आंख से तो सभी दर्शन करते हैं, उसका उतना महत्व नहीं है। आप लोगों ने जो वृंदावन का दर्शन किया, गोवर्धन का दर्शन किया, ये सब आंख से दर्शन करना वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो नास्तिक भी जाकर के देख सकते हैं। कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी सभी दर्शन करते हैं, तो सबका एक ही फल तो होना चाहिए। एक भक्त वहां पर दर्शन कर रहा है, एक कर्मी ज्ञानी जा रहा है, सबको गिरिराज एक ही समान तो चीज देंगे, इन आंखों से देखने से एक ही जैसा तो दिखेंगे। नहीं, एक आदमी को पत्थर दिखता है, कोई वहां पर प्राकृतिक सीनरी देखता है, कोई देखता है यहाँ पर बहुत धूल है, कोई कुछ देखता है, कहते यहाँ का पानी गंदा है, ऐसे देखते हैं आंखों से। आंख से देखने की चेष्टा न की जाए, हम लोग अधिकांश रूप में आंख से ही देखने की चेष्टा करते हैं। भाड़ा दिया बस का, 500 रुपया दे दिया और सबको दिखला दिया, बस हमारा सब हो गया। नहीं, ये तो देखना ही नहीं, पैसे के द्वारा जो चीज होता है वो नहीं दिखता है। श्रद्धापूर्वक कानों से उसको दर्शन करने की चेष्टा की जाए, यही हमारे आचार्य वर्गों की गुरु परंपरा की धारा है। एक आदमी आंख का बिना भी रहने वाला उसका दर्शन कर सकता है ब्रज का, यदि श्रद्धा से इन कान से उसको सुने। तो कुलीन ग्राम के व्यक्ति ने कहा, पूछा भक्त ने, जे प्रभु आपके रथ यात्रा हम लोग आए थे, आज सफल हुई, अब बतलाइए, अब हम लोग घर के लिए जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? अब आप लोग भी बंबई जा रहे हैं, लौट रहे हैं, कोई अपने अब सभी लोग 2-4 दिनों में ही लौटेंगे, बंगाल से प्राय 250 आदमी आए हैं ये यात्री भी, और फॉरेन कंट्री से दे हैव कम अबाउट 35-40 फॉरेन डिवोटीज, दे विल आल्सो रिटर्न, वो लोग भी लौटेंगे, क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु जी कहते हैं, देखो कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का नाम सब समय करना, और वैष्णवों की सेवा करना। उन्होंने कृष्ण नाम तो कीर्तन हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये तो कर लेंगे, ये बात तो ठीक है, या और भगवान के जो नाम के कीर्तन है कर सकेंगे हम लोग, और कृष्ण की सेवा भी उनका अर्चन भी कर लेंगे हम लोग, किंतु वैष्णव सेवा हम लोग कैसे कर सकेंगे? हम कैसे समझेंगे वैष्णव? क्या तिलक और गले की माला से हम लोग समझ लें कि ये वैष्णव है, या लाल कपड़े से समझेंगे ये वैष्णव है, कैसे समझेंगे? तो महाप्रभु जी ने पहले वर्ष ये बतलाया, जो एक नाम भी करता है उसको सजातीय समझकर उसको मन से आदर करो। दूसरे वर्ष बतलाया, जो निरंतर नाम करते हैं उनको साधु वैष्णव समझ करके उसकी सेवा करो। तीसरे वर्ष में क्या बतलाया, जिसके देखने से ही अपने आप कृष्ण आ जाए, हृदय निर्मल हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, गुरु वैष्णव की सेवा करने की स्पृहा जरूर है, उनको उत्तम वैष्णव मान करके संपूर्ण रूप से उनकी सेवा करो, अपने हृदय को उनको समर्पण करो अनकंडीशनली। और यदि वो संत हो निंदा इत्यादि शून्य, भागवत के रसिक भावुक भक्त हो और राधा कृष्ण के एकांतिक भक्त हो, और विशेष करके रागानुगा में भी रूपानुग हो, तो अपना सर्वस्व उनके चरणों में निछावर कर दो। किंतु यह समझना भी बड़ा भारी कठिन है कि रूपानुग कौन है, अभी आप लोग अभी नहीं समझ सकेंगे। इसी तरह से उन्होंने बताया जिनकी भगवान में अभी कोमल श्रद्धा है वो कनिष्ठ है, उनको कहो जी ठाकुर जी की, बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की, शिव विग्रह की सेवा करना, अर्चन करना। जो जिनकी श्रद्धा कुछ दृढ़ हुई है किंतु नहीं जाने दृढ़ सिद्धांत तो, अभी नहीं जानते हैं किंतु श्रद्धा हुई है, किसी के कहने से आप टलबन नहीं होंगे किंतु सिद्धांत अभी कुछ भक्ति का और जानना बाकी है, उनको मध्यम अधिकारी जान। और जो कि सिद्धांत में निपुण है और श्रद्धा भी दृढ़ हो गई है उनको उत्तम भागवत समझो, इनकी सेवा। ऐसे वैष्णव मिलना भी सर्वत्र बड़ा भारी कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान का मिलना सहज हो सकता है किंतु ऐसे वैष्णवों का दर्शन और उनका मिलना और उनकी सेवा को प्राप्त करना और बहुत भी कठिन है। यदि मिल जाए जो कहे जीवन, अब हम लोग भव सागर को पार करके अब कृष्ण के चरण में हम जाकर के अब गोलोक वृंदावन पहुंचने वाले हैं, ऐसे भक्तों का यदि संग हो जाए तो क्या श्लोक है, ऐसे भक्तों का संग हो जाने से समझे जो भव पार अब होना, अब आवागमन अब समाप्त होना है। भवाप वर्गो भवित जदा तरही चुत सत्समागम, सत्समागम जरही तदैव परावरेशे त्वयि जायते रति। ये अथाह भाव सागर है, इसका कोई काउंटिंग नहीं है, कब से जन्म हो रहा है कब तक जन्म होगा कोई भी आर पार नहीं। भाव माने होता है होना, जन्म और मरण होना, सो मत कोई आंख में माया पत्थर रख रही है, ये भाव सागर है जन्माना और मरना। यदि साधु संग ऐसा मिल जाए, ऐसा योग्य समझो जी, हमारा भाव सागर अब बंद होने वाला है। जिसका भाव सागर बंद होना आता है, भगवान की कृपा से ऐसे संतों का भगवान ही मिलन करने की व्यवस्था करा देती है। समझो कि अब भाव सागर हम पार करना चाहते हैं, अब हो ही गया, इसलिए भगवान का दर्शन सहज हो सकता है किंतु ऐसे महात्माओं का दर्शन बड़ा भारी कठिन है। इसलिए ऐसे वैष्णवों की सेवा कहाँ मिलेगी, पूछोगे जी महाराज जी आपकी क्या सेवा करूं, तो ऐसे वैष्णव क्या कहेंगे, रुपए की उनको जरूरत है नहीं, किस चीज की जरूरत है, कोई वैभव की जरूरत नहीं, कोई विभूति की जरूरत नहीं, किसी चीज की उनको आवश्यकता ही नहीं है, क्या सेवा करेंगे। इसलिए साधारण आदमी नहीं समझ सकता है, जो कुछ मध्यम अधिकारी के होंगे उन लोगों को सेवा कुछ कर सकते हैं। उनको यदि प्रेम भरा भगवान की कोई कथा सुना दी जाए, और यदि तुम्हारी रुचि देखेंगे जो बहुत सुंदर रुचि भगवान का भजन करने के लिए हुई है, तो अपने आप द्रवित हो जाए, तस्मिन महन मुखरिता मधुभीष चरित्र, अब अपने आप द्रवित होकर के हृदय से अपने आप कृष्ण की लीला कथाएं, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला कथाएं अपने आप द्रवित होकर के बहने लगी, और बहुत किनारे से यदि उसका एक स्प्रिंकल भी, उसका एक छीटा भी किसी के शरीर पर पड़ गया तो वो बस धन्य हो जाएगा, ऐसे महात्माओं का। बहुत नहीं होते सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ होते हैं ऐसे संत जिनको किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, दिन रात भगवत चर्चा में डूबे रहते हैं, जिनको शरीर की सुध बुध नहीं है, जिसको अपने लिए कुछ की जरूरत नहीं है। महाप्रभु जी ने ये सब शिक्षाएं दी, हम लोग को भी आचरण करना चाहिए। अर्चन भी समझना चाहिए, सब अर्चन एक समान नहीं है। बिना भाव का अर्चन वो अर्चन अभी नहीं, विधि विधान के सहित जो अर्चन करते हैं राधा कृष्ण की या लक्ष्मी नारायण की उपासना है उनका अर्चन है, राधा कृष्ण का अर्चन नहीं होता, ये भी समझना बड़ा भारी मुश्किल है। तो अभी हम लोग कहते हैं ये करो, यदि गृहस्थों के लिए कुछ करना है तो उनको अजामिल का उपाख्यान स्मरण करना चाहिए। स्मरण रखना चाहिए अजामिल महादुराचारी, पहली स्त्री को छोड़ दिया, बाल बच्चों को छोड़ दिया, वृद्ध माता पिता को छोड़ दिया और एक नीच जाति की वेश्या से भी अधिक गई बीती, एक औरत पर आसक्त हो गया, धर्म सब कर्म सब कुछ जलांजलि दे दिया, सत्कर्म भी जलांजलि दे दिया, डकैती लूटमार ये सब करने लग गया, यहाँ तक ही हत्या तक भी करने लगा, शराब इत्यादि की तो कोई बात ही नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं जो जघन्य जो नहीं किया, किंतु मरते समय में उसके कुछ दिन पहले उसको एक बच्चा हुआ, अवैध संतान ही अपने